सुख शक्ति
स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति अखंडित प्रताप युक्त स्वातंत्र शालित्व
लक्षण
प्रभुत्व शक्ति सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत फिर से विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञान मई सर्वज्ञत्व शक्ति निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचकोप योग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्ति मई प्रकाश शक्ति क्षेत्र कालानवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति अन्यक्रियमाण अन्यकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणाम तत्व शक्ति अन्योनातिरिक्त स्वरूप कैसे अन्योनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति जहाँ ज्यादा संधि आती है ना तो आप नीचे देखा करो संधि विग्रह में द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम अनुभवोपरमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पन्द्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही
आ
संसार संभरण विस्तरण लक्षित किंचिदून चरम शरीर परिमाणावस्थित लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति ही सर्व शरीरे एक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्याप्तत्व शक्ति ही स्वपर समाना समान समाना समान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति ही विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति ही तदत रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ही तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति ही अतद्रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति ही अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्य मयत्व रूपा एकत्व शक्ति ही एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति ही भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति ही शून्यावस्थत्व रूपा अभाव शक्ति ही भवत् पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति ही अभवत् पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति ही भवत् पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति ही अभवत् पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र मई भाव शक्ति कारकानुगत भवत्तारूप भाव मई क्रिया शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भाव मई कर्म शक्ति भवत्तारूप सिद्ध रूप भाव तत्वमयी कर्तृशक्ति भवत् भाव भवन साधकतमत्वमयी करण शक्ति स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति उत्पाद व्ययालिंगित भाव अपाय निरुपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति इति 47 शक्ति विवेचनम्। अभी तो शुरू हुआ है सर। Thank you. सर्व सिद्धानं नमो लोये सव्रायरियाणं नमो लोये सव्वज्जायाणं नमो लोये सव्त्रिकालवर्ती साहूनम् जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझाजो के पद नमो ये जो मंगलाचरण में अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं ना, कौन पढ़ता है सब? गुरुदेव श्री का जो आप रोज मंगलाचरण सुनते हो उसमें वो यही मंगलाचरण करते हैं। नमोकार मंत्र का विस्तृत पाठ है ये। हम लोग जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं वो नमोकार मंत्र का संक्षिप्त पाठ है। ये नमोकार मंत्र का विस्तृत पाठ है, धर्मला में मिलता है, गुरुदेव श्री बताते थे और वो यही पाठ उनका मंगलाचरण में प्रवचन के पहले रोज सुनते हैं। हम यहाँ पर 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। कल हम अतुलभुत्व शक्ति पर चर्चा हमारी हुई थी। इस अतुलभुत्व शक्ति के का प्रताप जो है वो आत्मा में एक विशिष्ट आकार लेता है। छह प्रकार की वृद्धि और छह प्रकार की हानि से ये आत्मा निरंतर प्रत्येक पर्याय पर्याय में परिणमित होता है। अनंत गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण हानि, अनंत भाग हानि, बड़ी विचित्र है। तो ऐसी जो छह प्रकार की वृद्धि और छह प्रकार की हानि, वो ये द्रव्य आत्मा प्रति समय अपनी प्रत्येक पर्याय में करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि इससे ही उसके स्वरूप की प्रतिष्ठा होती है। यदि वो ऐसा ना करे तो वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता आत्मा। ये उसके जिंदा बने की निशानी है। इसके लिए मुझे गुरुदेव श्री और बेन श्री चंपा बेन वो इसके लिए ऐसा उदाहरण देते थे कि जैसे हम हीरा है, हीरा उसको हमने ऐसा हाथ पे रखा एक ही एंगल पर और एक ही एंगल पे रख करके उसको देख रहे हैं। उसके बाद भी जितना उसको देखो उतना वो बदलता हुआ नजर आता है। प्रत्येक समय में वो एक जैसा नहीं आता, उसकी जो चमक है वो चमक उसकी घटती बढ़ती हुई नजर आती है। जबकि वहां पर कोई निमित्त का ऐसा प्रभाव नहीं है, निमित्त का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है और हमने भी उसको एक ही एंगल पे रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी चमक में जो अंतर आता है, तो ये उसकी ऐसा ये उदाहरण है। इसमें तो कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा आत्मा प्रत्येक द्रव्य, आत्मा भी और प्रत्येक द्रव्य भी ऐसा प्रति समय ऐसा सड़गुणी हानि वृद्धि के रूप में परिणमित हो रहा है। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि केवल ज्ञान में भी, अब आप ये पूछोगे कि साहब केवल ज्ञान में क्या वृद्धि हो जाती है, केवल ज्ञान में क्या हानि हो जाती है? तो इस बात का हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये भी कहा गया कि ये जो सड़गुणी हानि वृद्धि होती है ये केवल ज्ञान गम में है, ये छद्मस्थों के ज्ञान गम में नहीं है, होती है। ये तो शास्त्र आगम से सम्मत है, बात आगम में लिखी है और जो भी विचारक है, ज्ञानी है, वो इसका थोड़ा बहुत विस्तार करते भी हैं। लेकिन जब हम बहुत डीप में जाने की कोशिश करते हैं इसके, तो वो जो है उसका समाधान कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको केवल ज्ञान गम्य भी, इस विषय को, ऐसे दो चार दस विषय हैं आगम में जिनको केवल ज्ञान गम्य कहा गया, उसमें एक विषय ये भी है अग्रलघुत्व गुण का, सद्गुणी हानि वृद्धि का, केवल ज्ञान में। सिद्ध भगवान में भी सद्गुणी हानि वृद्धि हो रही, उनके सुख में अनंत सुख है ना, जो उनको अनंत सुख, वो अनंत सुख में सद्गुणी हानि वृद्धि हो रही। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे उनके अनंत सुख को कोई हानि नहीं, अनंत सुख को कोई हानि नहीं, अनंत केवल ज्ञान को कोई हानि नहीं, लेकिन उसके बाद बावजूद उसमें सद्गुणी हानि वृद्धि होती है, तो वो किमात्मक है, वो कैसे है, इसका कोई बहुत अच्छा रीजन उसका ख्याल में नहीं आता है, इसलिए उसको जो है केवल ज्ञान गम्य भी ऐसा कहा गया है। अब आपको, अब हम अगले शक्ति पर चलते हैं कि जब आत्मा में ऐसी सद्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है तो इसका क्या रिजल्ट आता है, सद्गुणी हानि वृद्धि का क्या रिजल्ट है, तो बोलते हैं उसके रिजल्ट में ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति ही, उसमें प्रति समय एक नई पर्याय का उत्पाद होता है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है, और अपने स्वरूप से वो द्रव्य स्थिर बना रहता है, ध्रुव बना रहता है, ऐसी एक संयोगिक शक्ति है, ऐसी एक उत्पाद शक्ति अलग नहीं, व्यय शक्ति अलग नहीं, ध्रुव शक्ति अलग नहीं, ऐसी तीनों मई एक शक्ति है। उत्पाद व्यय का क्या प्रभाव होता है और ध्रुव का क्या प्रभाव होता है, इसको अमृतचंद्राचार्य ने उनने अपनी व्याख्या में कहा है। देखो कैसी ये शक्ति है, क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, क्रम रूप वृत्ति, अक्रम रूप वृत्ति, उत्पाद व्यय के कारण प्रत्येक द्रव्य में आत्मा में क्रम वृत्ति होती है। क्या होता है क्रम वृत्ति, किसका प्रतीक है, ये पर्याय का प्रतीक है, माने उत्पाद व्यय के कारण प्रत्येक द्रव्य ये क्रम वृत्ति माने क्रमशः परिणमन करने वाली, एक एक करके परिणमन करने वाली, प्रति समय एक पर्याय, ऐसा अनंतानंत जितने तीन काल के समय हैं, उन तीन काल के समयों में एक एक समय में एक एक पर्याय को परिणमन करने की, प्रत्येक द्रव्य में आत्मा सहित प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है, वो क्रम रूप परिणमन करेगा। फिर दूसरा क्या है, अक्रम वृत्ति, वाह, वो क्रम रूप परिणमन करेगा लेकिन उसके बाद भी वो अक्रम वृत्ति रूप बना रहेगा। देखो ये तो मैं पर्यायों के संदर्भ में कह रहा हूं कि क्रम वृत्ति रूप पर्याय होते हुए भी उसमें भी एक प्रकार का प्रवाह है, ध्रुव प्रवाह बना रहता है पर्यायों में भी। रोचन सार में ये क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति को पर्याय में घटा करके बताया, पर्याय में ही क्रम वृत्ति भी है और अक्रम वृत्ति भी है। यहां पर हम इसको दो प्रकार से घटा सकते हैं। देखो मैंने इसके अर्थ में इसको दो प्रकार से कैसे घटाया है, जिस शक्ति के कारण आत्मा क्रमभावी पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व्यय रूप और अक्रमभावी गुणों की अपेक्षा अथवा सहभावी पर्यायों की अपेक्षा ध्रुव बना रहता है, उसे उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति कहते हैं। माने गुणों में अक्रम वृत्ति मानी गई है और पर्यायों में क्रम वृत्ति मानी गई है। अब क्रम वृत्ति मानी गई है, ये क्रम वृत्ति कब संभव है, ये क्रम वृत्ति कब संभव है, प्रत्येक द्रव्य में एक समय में तो एक ही पर्याय दिखाई देगी ना, और इनको क्रम वृत्ति करना है तो क्रम वृत्ति करना है और एक समय में एक पर्याय दिखाई देगी तो ये कैसे संभव होगा, दूसरे समय में दूसरी पर्याय कैसे दिखाई देगी, तीसरे समय में तीसरी पर्याय कैसे दिखाई देगी, तो वो ये कहते हैं कि ये उत्पाद व्यय के द्वारा ये संभव होता है। प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद ऐसा निरंतर बना रहता है, इसलिए उसमें एक समय में एक ही पर्याय दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब उत्पाद हुआ दूसरी पर्याय का, तो पूर्व पर्याय का उसी समय व्यय हुआ, उसी समय व्यय हुआ। और मजेदार बात, पूर्व पर्याय का व्यय पूर्व समय में, उत्तर पर्याय का उत्पाद उत्तर समय में, ऐसा नहीं है। क्या ये उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में, ये कमाल है। जो पूरा जैन दर्शन का अनेकांत है, जैन दर्शन का जो अनेकांत है, वो एक इस सूत्र पर आधार पर टिका हुआ है। ये सूत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। माने अनेकांत के भी जितने सूत्र हैं, अस्तित्व नास्तित्व आदि एक अनेक जितने भी धर्म हैं, उनमें इसको बहुत प्रमुखता दी गई है, इस सूत्र को। क्यों दी गई है? क्योंकि सत द्रव्य लक्षण, और सत का लक्षण क्या? बोले उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत। तत्वार सूत्र ने और सारे सत के लक्षण द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत वो नहीं बताया। तत्वार सूत्र कह रहा है कि इसका जो सत टिका हुआ है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन एक ही समय में उत्पाद रूप भी, उसी समय में व्यय रूप भी, और उत्पाद व्यय करने के बाद भी ध्रुव कोई का वही। ये बहुत आश्चर्यकारक है। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि आप 47 शक्तियों में एक एक शक्ति की माला फेरो रोज। फेरी थी किसी ने? काय को फेरो गया? देखो मैंने ये जो है ना, इसको थोड़ा विचार श्रेणी में लेने की जरूरत है। इसको जो है आप वक्ता पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आगम पर भी, आगम में जितना लिखा है उतना लिखा है, और हमको मालूम नहीं ना आगम में कहां क्या लिखा है, तो कहां कहां जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आगम पढ़ करके, उसकी व्याख्या सुन करके, उसके बाद में आप बैठो ध्यान में, सामायिक में, और एक एक सूत्र पर ही सिर्फ पूरा विचार केंद्रित करो। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, ये तो नाम हुआ, और इसकी पूरी व्याख्या के साथ में आप माला फेरो। क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। फिर देखो क्या मजा आता है। बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं। दिमाग ना चले, दिमाग जैसे आपका दिमाग नहीं चल रहा है अब क्या करें, तो दिमाग अभी नहीं चल रहा है ना, तो आगे चलेगा। आप घबराना नहीं, घबरा करके छोड़ना नहीं, मुद्रा मत छोड़ देना, बैठे रहना बिल्कुल चिपके हुए। वो बेंसरी बोलते थे ना, क्या शब्द बोलते थे वो, चोट करके ऐसा कुछ शब्द आता है ना उनका, हैं? जोंक, जोंक का उदाहरण देते हैं, जोंक का उदाहरण देते हैं, और हैं, हाँ जो भी है आप देखना। माने जैसे हम आत्मा को सुनते हैं, आत्मा का व्याख्यान सुनते हैं, गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुनते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता है तो क्या करना है बताओ? नहीं समझ में आए तो क्या करना बाबू भाई? छोड़ देना, चिपके रहना, वही मैं कह रहा हूं, चिपके रहना, चोट जाना बिल्कुल। अभी समझ में नहीं आएगा, आया है तो कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा विचार नहीं करना। धीरज तन को खोना नहीं, धैर्य बनाए रखना। क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा, ये उत्पाद किया ध्रुवत्व शक्ति। इसकी व्याख्या अपन ने पहले भी करी थी, अपन थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। हमारा क्या बोल रहे रजनी भाई, रजनी भाई कहे कि आपने पहले दो दिन जो था ना वो टेस्ट मैच खेला। पहले दो दिन जब कोई टीम आती है ना, तो कुछ टेस्ट मैच होते हैं, कुछ वनडे होते हैं, कुछ 20-20 होते हैं, तो अपना दो दिन तो टेस्ट मैच चला, फिर चार दिन चार वनडे, अब अपने को दो दिन बचे तो अपने को कौन सा खेल अब 2020 की बारी आ गई है। एमजन जी ने किया, उत्तम चंद जी ने सब करने वाले
हैं। बराबर चाहिए
और नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं। कब लूंगा मालूम? रात को जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद। और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो सुबह 5 बजे से। चल सुनो 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 सुनो, ये बहुत बहुत मार्मिक है। ये उत्पाद क्या है? ध्रुवत्व शक्ति जो है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको गुणों की अक्रम वृत्ति तो आपके ख्याल में आती है, हमारे को ख्याल में आती है गुण ध्रुव है, अक्रम है, लेकिन पर्याय में भी अक्रम वृत्ति होती है। पर्याय उत्पाद व्यय रूप होकर भी ध्रुव होती रहती है। उत्पाद व्यय रूप रहने के बाद भी वो अपनी ध्रुवता का नाश नहीं करती है, अपनी ध्रुवता को समाप्त नहीं करती है, समाप्त नहीं करती है। जैसे बहुत सरल उदाहरण है, मति ज्ञान बदल करके श्रुत ज्ञान हुआ, बोलो किसका उत्पाद हुआ, किसका व्यय हुआ, कौन ध्रुव रहा? मति ज्ञान व्यय होकर के हुआ ना, तो मति ज्ञान का व्यय हुआ, श्रुत ज्ञान का उत्पाद हुआ, और ध्रुव कौन रहा? उस ज्ञान में वो एक अखंड प्रवाह ये बना रहा है। इसके लिए प्रवचन सार में आयत सामान्य और आयत विशेष ऐसा नाम दिया है। गुणों को आयत सामान्य नहीं कहा, आयत सामान्य ध्रुव है क्या, अक्रम है क्या, क्रम है, आयत सामान्य पूछ रहा हूं। आयत सामान्य ध्रुव है, आयत सामान्य ध्रुव है, और उसके आयत विशेष उसकी पर्याय है। तो पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है, लेकिन उसके साथ में वो जो क्रम लंबाई में जो आयत सामान्य है वो ध्रुव वैसा का वैसा बना रहता है। तो ज्ञान ये उसका आयत सामान्य है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये जो उसकी पर्याय है ये आयत विशेष है, और ये दोनों मिलकर के ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व कायम रहता है। और गुणों में वो आयत गुण जो है वो आयत सामान्य नहीं, पर्यायों की अपेक्षा तो आयत सामान्य है, वो भी गुण भी आयत सामान्य है, लेकिन एक द्रव्य में जो अनंत गुण है वो विस्तार विशेष है। कमाल की बात, क्या वो सामान्य नहीं, वो विस्तार विशेष है। और जो द्रव्य है वो अनंत गुणों में जो पसरा हुआ, गुरुदेव शब्द कर रहे थे आज व्यापक का, बहुत अच्छा अर्थ कर रहे थे, ये आया था ना व्यापक, स्वद्रव्य में व्यापक तुराती था। व्यापक माने क्या? गुरुदेव ने अर्थ किया पसर जाता है, पसर जाता है, ऐसा अर्थ किया। ऐसा ये जो द्रव्य है वो अपनी द्रव्यत्व के कारण अनंत गुणों में एक समय में पसर जाता है, एक समय में पसर जाता है। और आयत सामान्य की अपेक्षा देखो तो वो जो द्रव्य है अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों में वो त्रिकाल में पसरा हुआ है, त्रिकाल में, एक समय में नहीं। एक समय में तो एक ही पर्याय में व्यापक है, एक गुण की एक पर्याय में, एक समय में तो एक में ही व्यापक है, लेकिन त्रिकालवर्ती पर्यायों में वो पसरा हुआ है त्रिकाल। ये आयत सामान्य, ये प्रत्येक गुण का भी आयत सामान्य होता है, और द्रव्य को भी आयत सामान्य कहते हैं। द्रव्य की ऐसा तुमने परिभाषा बांधी, जो आयत सामान्य और विस्तार सामान्य स्वरूप होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा है प्रवचन सार। चलो अब अपन जो चलते हैं, ये जो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है ये किसको पैदा करती है, ये किसको पैदा करती है? बोले ये परिणाम को पैदा करती है। तो ऐसा परिणाम को पैदा करने का आत्मा में क्या है? बोले आत्मा में एक ऐसी शक्ति है उसका नाम है परिणाम शक्ति। देखो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप होता है द्रव्य आत्मा, वो उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति के कारण, और वो उत्पाद व्यय ध्रुव के फल में परिणाम उत्पन्न होता है वो परिणाम शक्ति के कारण। एक दूसरे का संबंध भी है, एक दूसरे का संबंध भी है और उसके लिए अलग से देखना बहुत स्लाइट स्लाइट छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ में ये शक्तियां प्रकट हो रही है बहुत स्लाइट छोटे छोटे डिफरेंस के साथ में। उत्पाद या ध्रुवत्व शक्ति का काम क्या है कि उसका काम तो क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति उन दोनों में एक बैलेंस बनाए रखना। क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षण क्रमाक्रम वृत्ति वृत्तित्व लक्षण ये दोनों में वो व्यापक है। क्रमाक्रम वृत्ति में क्रम और अक्रम रूप जो दो वृत्तियां हैं मैंने गुण पर्याय दोनों में वो व्यापक वृत्तित्व लक्षण। फिर परिणाम शक्ति ये कैसे हुआ परिणाम कैसे हुआ और इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का वो क्रम उन्होंने पलट दिया। तो पहले भी मैंने कहा था पलट दिया कैसे पलटा पहले कहा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति ने कहा द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित। क्या बोलना है देखो इसको पढ़ते हैं अपन इसको थोड़ा सा आप टुकड़े में बांटना पदों में द्रव्य स्वभाव भूत ये पहला पद द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित ये दूसरा पद सदृश विसदृश रूप ये तीसरा पद एक अस्तित्व मात्रमयी ये चौथा पद और इन चारों को मिलाओ तो बनती है परिणाम शक्ति। कैसी है परिणाम शक्ति द्रव्य स्वभाव भूत है मालूम रोचन सारणी ये सारी शक्तियां यदि खोजी जाए मैंने हेमचंद जी से बात करी है ये सारी शक्तियों को यदि रेफरेंसेस खोजे जाए तो एक नहीं बीसों बीसों रेफरेंस एक एक शक्ति के हमको समय सार में रोचन सार में ये ग्रंथों में मिलेंगे। ये परिणाम शक्ति का रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको रोचन सार की शायद 95 नंबर की गाथा है उसमें उन्होंने लिखा कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। ये द्रव्य स्वभाव भूत से बता रहा हूं मैं आपको परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव शब्द का प्रयोग किया परिणाम और वो उत्पाद जो है द्रव्यमयी है ऐसा ऐसा
तीनों को परिणाम का
हाँ बिल्कुल। अभी ये इसमें ये कह रहे हैं ना देखो स्वभाव भूत कह रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने नंबर लगाया द्रव्य व्यय उत्पाद परिणाम पे पहुंचाना है ना परिणाम पे पहुंचाना है तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम नहीं होता है। फिर कैसा होता है परिणाम परिणाम तो द्रव्य व्यय उत्पाद रूप होता है क्यों क्योंकि उसका साक्षात स्वरूप जो परिणाम का है वो उत्पाद में दिखाई देता है। लेकिन वो परिणाम कैसे हुआ वो पूर्व परिणाम के व्यय से हुआ है वो नई जगह खाली करता पूर्व परिणाम। तो ये जो वर्तमान हमको परिणाम दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देता इसलिए व्यय भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है व्यय का। और जो ये परिणाम हुआ है जिस द्रव्य का जिस गुण का जो स्वभाव है उसका अतिक्रमण उसने नहीं किया है ये द्रव्य पहले है द्रव्य पहले है। द्रव्य स्वभाव भूत कौन है मूल में द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य है। द्रव्य में से प्रति समय एक एक परिणाम हो रहा एक एक परिणाम में पूर्व समय में उस परिणाम का व्यय हो रहा है फिर उत्तर परिणाम उत्पन्न हो रहा है। हमको जो दिखाई दे रहा है परिणाम वो कैसा है वो तो उत्पाद स्वरूप है। हमको जो दिखाई दे रहा है साक्षात में जो सामने आ रहा है पिक्चर में वो तो है उत्पाद स्वरूप लेकिन ये पूर्व पर्याय को व्यय करके हुआ है और ये जो परिणाम हुआ है जैसा उस द्रव्य का स्वभाव था जैसा उसके गुण का स्वभाव था उसी के अनुरूप हुआ है। ज्ञान में से ज्ञान ही निकलता है ज्ञान में से दर्शन नहीं निकलता सुख में से सुख ही निकलता है सुख में से बोलो सुख में से वीर निकल जाएगा। कारण कार्य बन सकता है एक दूसरे का रूप बनेगा एक दूसरे का रूप बनेगा लेकिन जो उसका मौलिक स्वरूप है वो कभी छिन्न भिन्न नहीं होगा। और ये शक्तियों के प्रकरण में यदि हम देखें तो सुख शक्ति में से दुख निकलता है क्या? शक्ति में से नहीं निकलता। और गुण की जब व्याख्या करेंगे तो ये जो दुख है वो क्या है? बोले वो सुख गुण का वैभाविक परिणाम है। वो गुण की व्याख्या में से निकलता है, शक्ति की व्याख्या में से नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि शक्ति कभी दुख स्वरूप नहीं हो सकती। यदि शक्ति ही दुख रूप हो गई तो फिर तो इस आत्मा का कुछ हो नहीं सकता। शक्ति दुख रूप हो गई। अरे अभव्य की भी, जिसको कभी सुख नहीं होगा, उसकी शक्ति भी सुख स्वरूप है। अभव्य की भी बोलो, उसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों में कहीं सुख नहीं दिखाई दे रहा। चले जाओ भविष्य काल की, अनंत काल बाद की पर्याय, कहीं सुख हो तो बताओ। सुख शक्ति तब तो बने। बोले नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। उसमें भी जो सुख शक्ति है वो सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप है? वो सुख स्वरूप ही है। सुख शक्ति तो अनाकुलत्व लक्षण है, वो अपनी हो गई। चलिए अभी अपने को भैया इसमें वो लगा देना, मेरे नस से पावर नहीं, इसमें वो लगेगा
नहीं।
अच्छा यहाँ क्या बात है, वहां से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा चलो, परिणाम शक्ति देखो। अभी दो बात, दो पद हुए हमारे, द्रव्य स्वभाव भूत। बहुत व्याख्या में नहीं जा सकते अपन। द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित, ये आलिंगित शब्द जो है, मैंने इसकी बहुत खोज करी सर। ये 47 शक्तियों में कितनी जगह आलिंगित आया, इसकी भी खोज करी। आलिंगित शब्द विशेष रूप से जब जब उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा आई है वहां वहां आलिंगित शब्द आया। क्या माने? ये द्रव्य, इसका जब आलिंगन होता है तो इसका आलिंगन किसके साथ होता है? तो बोले इसका उसके परिणाम के साथ में, इसके उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ में प्रत्येक द्रव्य आलिंगन बद्ध है। जैसे तीसरी गाथा में कहा चुंबता है। यहां कह रहे हैं कि आलिंगन करता है। द्रव्य स्वभाव भूत, द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित, वाह। सदृश विसदृश रूप, क्या? सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई। देखना ये जो परिणाम है, ये परिणाम एक अस्तित्व मात्र मई है। यदि कोई द्रव्य का कोई चिन्ह है, यदि द्रव्य का कोई चिन्ह है, यदि द्रव्य की कोई पहचान है, तो ये परिणाम उसकी पहचान है। गुण नहीं दिखाई देता हमको, द्रव्य नहीं दिखाई देता हमको। इसलिए तो 20वें बोल में उन्होंने कहा द्रव्य से अनालिंगित, वहां भी अनालिंगित शब्द ऐसा है, द्रव्य से अनालिंगित ऐसा पर्याय मात्र है। गुरुदेव ने उसमें से अनुभूति निकाली, वाह। क्यों? क्योंकि हमको जो अनुभव होता है वो द्रव्य का अनुभव नहीं होता, वो गुण का अनुभव नहीं होता। हमको तो जो पर्याय वर्तमान में परिणम रही है बस उसका ही अनुभव होता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से कहते रहो तुम, क्या चेतन भाई? द्रव्य दृष्टि से आप कहो पर्याय से भिन्न द्रव्य है, पर्याय से भिन्न द्रव्य है। 20वां बोल कहता है मैं ऐसी पर्याय हूं जो द्रव्य से भिन्न है। क्या मैंने, तुम हमारी कितनी बार इंसल्ट करोगे? ये पर्याय नहीं चाहिए, ये पर्याय नहीं चाहिए। वो पर्याय भी तो बोलेगी कभी कि मुझे भी नहीं चाहिए।
क्या बात है।
और जब वो मुखर होती है तब अनुभूति होती है, बीसवा बल आता है तब। जब वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करती है।
100 दिन सासू के एक दिन।
किसी चीज को ज्यादा दबाओगे तो कभी तो उछल के वो भी बाहर आएगी ना। ऐसे जय मुड़ा ही पसंद है, जय मुड़ा ही पसंद है। क्या बोले, वो बहुत जोरदार बोले। देखना ये परिणाम शक्ति हुई। अभी अभी मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, और मेरे को अभी इसमें अटकी है थोड़ी सी सुई। मैंने सदृश विसदृश की व्याख्या नहीं करी। सदृश विसदृश रूप है परिणाम, लेकिन उसके बाद भी विभाव रूप नहीं है। इसमें से ये रहस्य निकालना पड़ेगा, नहीं तो विसदृशता में हम विभाव खोजेंगे और सदृशता में हम स्वभाव खोजेंगे, लेकिन यहां सदृश विसदृशता में भी स्वभाव में ही सदृश विसदृशता है। अब ये गुणों की अपेक्षा भी हम देख सकते हैं कि अनंत गुण है, सब एक दूसरे से सदृश है कि विसदृश है। विसदृश है, एक गुण का परिणाम। हाँ देखो, एक परिणाम अस्तित्व मात्र में ही है ना, तो यदि हम उस परिणाम को अनंत गुणों का द्रव्य का जो परिणमन होता है ना, द्रव्य का परिणमन, द्रव्य का स्वतंत्र रूप से कोई परिणमन नहीं। क्या बोला? द्रव्य का स्वतंत्र रूप से कोई परिणमन नहीं, जो उसके अनंत गुणों का परिणमन है उसको ही अभेद रूप से कहें तो वही द्रव्य का परिणमन है। द्रव्य पर्याय, जो द्रव्य पर्याय संज्ञा आई है ना, द्रव्य पर्याय संज्ञा, ये द्रव्य पर्याय संज्ञा अनंत गुणों के अखंड परिणमन का नाम द्रव्य पर्याय है। व्यंजन पर्याय या उसको प्रदेशत्व गुण की पर्याय, वो तो एक गुण की पर्याय, उससे नहीं बनेगा। अनंत गुण द्रव्य, अनंत गुण मई सत्ता, इसलिए वो द्रव्य की पर्याय भी अनंत गुण मई परिणमन का प्रतीक है, ऐसा द्रव्य पर्याय। और उसकी व्याख्या अपन बाद में करेंगे। ये एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति है। अब देखो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऐसा परिणाम है आत्मा का, अस्तित्व मात्र मई परिणाम है, लेकिन जो आत्मा है ये तो सद्रव्यों का कॉमन है। परिणाम शक्ति सद्रव्यों में कॉमन है, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति सद्रव्यों में कॉमन है, लेकिन अग्रु लघुत्व शक्ति, ये पीछे की शक्तियां बहुत सारी गई जो सामान्य में चली गई, सामान्य शक्तियां हैं। अब इसमें फिर से आचार्य आत्मा पर आ रहे हैं कि भाई आत्मा परिणाम शक्ति सद्रव्यों के परिणाम को बताती है, लेकिन आत्मा कैसी है, आत्मा का परिणाम कैसा है? तो कहते हैं आत्मा का परिणाम अमूर्त तत्व शक्ति। ये अमूर्त तत्व शक्ति आई है ना, 20वीं शक्ति अमूर्त तत्व शक्ति है। देखो एक मैं आपको ये खोज के बताने वाला था, टाइम नहीं मिला। आत्मा में दो प्रकार के गुण कहे ना, दो प्रकार के गुण, सामान्य गुण और विशेष गुण। ये 47 शक्तियों में एक व्याख्या ऐसी आई है बहुत मजेदार कि आत्मा में दो प्रकार के गुण नहीं, तीन प्रकार के गुण है। कितने प्रकार के गुण है? देखो बहुत सारी बातें संक्षिप्त शैली में कही जाती हैं, लेकिन संक्षिप्त शैली, आवाज आ रही क्या? संक्षिप्त शैली में ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। संक्षिप्त शैली में बहुत सारी बातें, उसको ज्यादा डिटेल हो जाता है ना, ज्यादा डिटेल हो जाता है तो समझने में वो फिर उसको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए बाल बोधनी जब हिसाब चलता है ना, बाल बोधनी, तो उसमें बहुत सारी चीजें संक्षिप्त कर दी जाती है। यहां पर तो जो है तीन प्रकार के गुण कौन से मालूम? एक सामान्य गुण, दूसरे विशेष गुण, तीसरे सामान्य विशेष उभय। एक आत्मा में शक्ति है, देखो मैं पहले आपको वो शक्ति सिखा देता हूं। 26वीं शक्ति है, इस शक्ति का नाम है साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति ये इसमें जो है मैं बहुत कंफ्यूज रहा पहले कि साधारण साधारण बाद में भी साधारण साधारण दो दो बार क्यों लिख रहे साधारण साधारण। ये हमने तो इसमें जो है ना ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अ लिख दिया, लेकिन मूल में जैसे नीचे लिखा ना 26 में साधारण साधारण जैसे नीचे लिखा ना दूसरी लाइन में ऐसे ऊपर भी ऐसे लिखा और बिल्कुल ये डैश वैश भी कुछ नहीं है वो बिल्कुल एक अखंड है साधारणा साधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति। ये दो दो बार क्यों लिख रहे हैं? लेकिन बाद में जब इसकी व्याख्या करते हैं आचार्य तो व्याख्या में कह रहे हैं त्रिविध भाव धारणात्मिका, इसमें से रहस्य निकला। क्या बोले? ये जो साधारणा साधारण साधारणा साधारण है ये त्रिविध भाव धारणात्मिका है, इसमें तीन प्रकार के भाव हैं। तीन प्रकार के कौन से भाव हैं? बोले एक साधारण भाव, दूसरा असाधारण भाव और तीसरा साधारणा साधारण भाव। ऐसा आत्मा का ये तो बहुत ये धर्म कैसा है मालूम? ये कह रहा है कि मैं एक हूं। ये शक्ति कैसी है? एक है क्या? बहुत सारी ये तीन है क्या? एक है। साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति ये 26वें नंबर की एक शक्ति है, लेकिन ये एक शक्ति में आत्मा के सारे भाव अपने सारे प्रकारों के साथ उसमें गर्भित हैं। क्या? अपने प्रकारों के साथ ही साधारण असाधारण और साधारण असाधारण। अच्छा बताओ ये जो अमूर्तत्व गुण है जो 20वीं शक्ति अपनी चल रही है ये साधारण धर्म है कि असाधारण धर्म है कि साधारण असाधारण धर्म है? ये कौन सा धर्म है? ये साधारण साधारण धर्म है। क्यों? देखो साधारण का मतलब क्या होता है? जो सब में पाया जाए उसका नाम है साधारण, सामान्य का हो या साधारण का हो। विशेष का क्या मतलब होता है? जो सब में ना पाया जाए और अकेले अपने में पाया जाए उसका नाम है असाधारण, उसका नाम है विशेष। और साधारण असाधारण का क्या मतलब है? जो अपने अकेले में ना पाया जाए, अपने अकेले में ना पाया जाए इसीलिए तो वो साधारण है, दूसरे में भी पाया जाता है लेकिन सब में ना पाया जाए इसीलिए तो असाधारण है। सब में नहीं पाया जाता इसलिए असाधारण, और एक से ज्यादा में पाया जाता है इसलिए साधारण, इसलिए उसका एक तीसरा नाम है, वो क्या है? साधारण साधारण स्वपद सामान्य। ये शक्ति का है ना स्वरूप? अभी यही अपन इसका व्याख्या कर लेते हैं। स्वपर सामान, स्वपर समान, जो स्वपर में समान पाया रूप से रहे, असमान जो स्वपर में असमान रूप, स्व में रहे तो पर में ना रहे, पर में रहे तो स्व में ना रहे, और समान समान कि स्व में भी रहे और कुछ पर में भी रहे लेकिन सब परों में ना रहे, ये अमूर्तत्व है। पांच में पाया जाता है, पांच में, लेकिन पुद्गल में नहीं पाया जाता है। इसका जो अभियान है अमूर्त तत्व का जो अभियान है वो अकेले मूर्त तत्व के खिलाफ है। मूर्त तत्व मूर्त नहीं है, ये चेतन नहीं है। अमूर्त तत्व जो पना जो है वो चेतन नहीं है, लेकिन चेतन में भी होता है, चेतन में भी होता है, ये ऐसा अमूर्त पना है। लेकिन ये अमूर्तत्व शक्ति जो है अभी साधारण असाधारण समान असमान त्रिविध भाव धारणात्मिका, तीन प्रकार के भावों को धारण करने स्वरूप ये एक शक्ति ऐसा करती है। ये एक शक्ति तीनों प्रकार की शक्तियों का एक ये बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग बना रही है वो। ये इस शक्ति के मतलब तीन साधारण शक्ति असाधारण के साथ में कैसे रह सकती है, और साधारण और असाधारण शक्तियां एक साथ कैसे रह सकती है, और तीनों प्रकार की शक्तियां एक साथ कैसे रह सकती हैं? बोले नई आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो साधारण को भी असाधारण को भी साधारण असाधारण तीनों प्रकार के भावों को एक साथ धारण करने वाली है। इस शक्ति के कारण ये साधारण असाधारण में झगड़ा नहीं मचता। देखो अमूर्त तत्व शक्ति बहुत अच्छी शक्ति है। ये थोड़ी ये जो अमूर्त तत्व शक्ति है ये अमूर्त तत्व शक्ति आत्मा की है। अमूर्त तत्व गुण तो दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है लेकिन जो ये अमूर्त तत्व शक्ति की जो व्याख्या की है आचार्य देव ने वो व्याख्या आत्माश्रित है। ये सिर्फ आत्मा में है अमूर्त तत्व शक्ति। ये जो जिसकी शक्ति की बात कर रहे हैं क्यों और एकदम स्पष्ट है। पहला पद है उसका और पहला पद है कर्म बंध व्यपगम व्यंजित। कर्म बंध किसको होता है? कर्म बंध किसको होता है? कर्म बंध तो अकेले आत्मा को ही होता है। आकाश को नहीं होता, धर्म को नहीं होता, अधर्म को नहीं होता, काल को नहीं होता। इसलिए ये आत्मा की शक्ति है अमूर्त तत्व शक्ति। कर्म बंध व्यपगम व्यंजित बहुत बढ़िया अर्थ है ये। एक एक और इसमें से मर्म निकल रहा है बहुत अच्छा मर्म। क्या मर्म निकल रहा है? देखो आत्मा में क्या शक्ति है, कैसी शक्ति है। आप यदि डायरेक्ट जानना चाहो तो थोड़ा मुश्किल है डायरेक्ट। तो फिर क्या उपाय है आत्मा की शक्ति को जानने का? उपाय क्या है? जो सिद्धों में परिणमन व्यक्त हो गया है, सिद्धों की बात कह रहा हूं मैं, जो सिद्धों में परिणमन व्यक्त हो गया है, आप ये मान के चलो कि आत्मा की वैसी ही शक्ति है जो उनको प्रकट है, वैसी आत्मा में शक्ति है। नहीं तो आप जो है कुछ बहुत यदि डायरेक्ट आप जानने को जाते डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाता, गड़बड़ होने की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए जो जानती अपानम सो जानती अपानम मोरो खलु जादी तस्लयम। वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। यहां आत्मा को डायरेक्ट नहीं जनवाया। बोले साहब मैं मोह का क्षय करना चाहता हूं। बोले आत्मा को जान, बताओ मैं आत्मा को कैसे जानू? जा मंदिर में सामने अनंत भगवान के सामने खड़े हो जा और देख अनंत भगवान को। दब्बत गुणत पच्चयते और जैसा अनंत भगवान का द्रव्य बने, जैसे अनंत भगवान है गुण बने अनंत भगवान है पर्याय बने अनंत भगवान है वैसा ही मेरा आत्मा है। और ऐसे आत्मा का अनुभव करेगा तो ये दर्शन मोह का क्षय होगा। जैसा तेरा आत्मा अभी है ऐसे आत्मा का अनुभव करेगा तो दर्शन मोह का क्षय नहीं होगा। जैसा अभी है मैंने पर्याय, लेकिन मेरा आत्मा का स्वभाव द्रव्य का स्वभाव भी जैसा उनका द्रव्य है, मेरे गुण का स्वभाव भी जैसा उनका गुण है, मेरी पर्याय का स्वभाव भी जैसी उनकी पर्याय है। 80 गाथा की तो पहली पंक्ति टीका की बहुत मर्म की है। पहली पंक्ति कह रही है कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में कोई फर्क नहीं है। पहली पंक्ति ये कह रही है, सिर्फ पर्याय में भी। और मेरे को किसी ने बताया, शायद देवेंद्र जी ने या किसी ने बताया कि गुरुदेव श्री ने जब 80 गाथा के व्याख्यान किए हैं तो 3-4 बार प्रवचन सार्थक प्रवचन हुए हैं, कभी गुरुदेव को खुमारी इसकी रही भिन्नता बताने की, अनंत की पर्याय में और आत्मा की पर्याय में अंतर है, कभी ये खुमारी रही तो उन्होंने अंतर बताया। कोई व्याख्यान नहीं, कोई व्याख्यान में उन्होंने इस पर जोर दिया कि नहीं अनंत भगवान की पर्याय में और मेरी आत्मा की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुम एक व्याख्यान लेके आ जाओ कि साहब ये देखो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास में दूसरा व्याख्यान है गुरुदेव का मैं देख दूंगा सामने तुम्हारे इसलिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों पहलू हैं उसके। उनकी पर्याय में और हमारी पर्याय में अंतर खोजो। जहां नियम सार ऐसा कहता है, नियम सार में गाथा आती है ना ऐसी, एक कलश है का आता है ना, इसका अंतर नहीं है इसको बताने वाला है। हाँ, क्या उसमें क्या बोल है, क्या भाव है
कि अंतर दोनों में, संसारी में और,
हाँ संसारी और शुद्ध में जो अंतर करता है वो मिथ्या दृष्टि है। देखना ये भाव भी है। और जब अंतर करते हैं ना आचार्य, जब अंतर करते हैं तो ऐसा अंतर करते हैं कि क्या बताना, भगवान कहाँ आप और कहाँ मैं है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, मैं तो अल्पश्रुत हूं और जो बड़े ज्ञानी हैं उनके सामने तो मैं हंसी का पात्र हूं। ये अंतर बता रहे हैं, हे भगवान कहाँ आप, आपके गुणों का व्याख्यान करने में कौन समर्थ है। तो भगवान ने पूछ लिया, फिर काय को करता है, फिर काय को करता है, बोले भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं आपके गुणों का स्तोन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी, वो भाषा अच्छी नहीं है, मैं तो अपना राग शांत कर रहा हूं भगवान, इससे आपकी स्तुति में कुछ नहीं कर रहा, ये तो मेरे को राग आ रहा है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तो, वो भाषा थोड़ी खराब है, वो एक कहावत है लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। मैं तो अपनी कसाय शांत कर रहा हूं, मैं तो अपना राग प्रदर्शित कर रहा हूं, इसमें मालूम नहीं आपके जो आपके जो जिनको मैं गुण बता रहा हूं वो वास्तव में गुण है क्या नहीं, ये भी नहीं मालूम, लेकिन मैं तो यही समझ रहा हूं कि गुण है, भगवान आप सबका कल्याण करने वाले हो। अब ये भगवान में कोई गुण है ये वाला सबका कल्याण करने का, बोलो। लेकिन मैं तो बताते हुए यही बता रहा हूं, भगवान आपका सबका कल्याण करने वाला। भगवान बोला, अरे भैया मैं कहां किसी का कल्याण करता हूं, तुम क्या बोल रहे हो। भगवान आप जो है ना मेरी भाषा पे ध्यान मत देना, मेरे भाव पर ध्यान आप तो मेरे भाव पर ध्यान दो, मेरी आपके प्रति त्वद भक्ति रेव, मेरी आपके प्रति जो भक्ति है मुखरी कुरुते बलान्मा, मेरे को मुखर बना रही है। मुखर शब्द बहुत अच्छा नहीं है क्या, मस्करी करता है ये मुखर शब्द बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसी मस्करी करने के लिए, ये मेरा कोई दोष नहीं है भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आप समझो कि मेरा दोष है, ये जो आपकी भक्ति है ना आपकी वही मेरे साथ में ये जबरदस्ती कर रही है। तो भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान मां, मेरे साथ में बलात्कार कर रही है, बलान मेरे साथ में जबरदस्ती कर रही है ये, कि बोल बोल मान तुम बोल, क्यों चुप बैठा है। भगवान कुछ गलत हो जाए तो, अरे उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना बोल। देखना ऐसे ये जो है अमूर्त तत्व शक्ति कह रही है कि कर्म बंद, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सिद्धों में जो पर्याय, जो वो पर्याय की व्यक्तता जैसी उनकी प्रकट हुई है अपनी सर्व सामर्थ्य के साथ, ऐसी सर्व सामर्थ्य के साथ में ऐसी शक्ति मेरे में है। हम अपनी शक्ति को सीधे कैलकुलेट करने जाएं तो पता नहीं हम सही करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धों को देखो आप, सिद्धों में अनंत ज्ञान, मेरे में अनंत ज्ञान की शक्ति, सिद्धों में अनंत सुख, मेरे में ऐसी सुख शक्ति, सिद्धों में अनंत वीर, मेरे में ऐसी वीर शक्ति, सिद्धों में अनंत दर्शन, मेरे में ऐसी दर्शन शक्ति, सिद्ध भगवान सर्वज्ञ, मेरे में ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति, सिद्ध भगवान सर्वदर्शी, मेरे में ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति, सिद्ध भगवान की स्वच्छता में सारा लोकालोक झलक रहा है, मेरे में ऐसी शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ये ऐसी शक्तियां। इसलिए जो है यहां पर अमूर्तत्व शक्ति को बताते हुए आचार्य उस सिद्धों का सहारा ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, जो कर्म बंध का व्यपगम माने अभाव करने से व्यंजित माने प्रकट होती है। देखो इसके अर्थ में देखना, जिस शक्ति के कारण आत्मा कर्म बंध के अभाव, व्यपगम माने अभाव से व्यंजित माने प्रकट और सहज, वाह अमूर्त तत्व शक्ति जो है वो कर्म बंध के अभाव से प्रकट होती है, सहज होती है, और कैसी होती है, स्पर्श आदि शून्य, स्पर्श आदि से शून्य होती है, और आत्म प्रदेश आत्मिका। देखो ये इसलिए ये भी आ गया, इसमें भी क्या आ गया कि ये आत्मा की अमूर्तत्व शक्ति है, ये आकाश की नहीं है, ये आत्म प्रदेश आत्मिका, ये शब्द भी डाल दिया इसमें, आत्म प्रदेश आत्मिका अमूर्तत्व शक्ति, आत्मा के प्रदेश, ये प्रदेश आश्रित है, ये जो अमूर्तत्व बना है ना, ये प्रदेश आश्रित है, इसमें प्रदेश की मुख्यता है। देखो इसके बाद में एक शक्ति आ रही है, दो शक्तियों का जोड़ा है, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति, देखना शक्ति में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का जोड़ा है, और नयों में कर्त्री नय अकर्त्री नय भोक्त्री नय अभोक्त्री नय, वहां चार हो गए, वो कर्त्री अकर्त्री का जोड़ा, भोक्त्री अभोक्त्री का जोड़ा, वो ज्ञान नय से जाना, लेकिन आत्मा में से वो कर्त्री नय गायब, कर्त्री नय का धर्म शक्तियों में गायब, अगर भोक्त्री नय का धर्म वो आत्मा की शक्तियों में से गायब, यहां अकर्त्री सिर्फ अकर्त्री और सिर्फ अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, अगली शक्ति है अभोक्तृत्व शक्ति। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो दो मिनट का समय, मैं आपको दोनों शक्तियां बता देता हूं। सकल कर्म कृत, ये अकर्तृत्व शक्ति कह रही है कि आत्मा रागादि विकारी परिणामों के कारण स्वरूप नहीं होता है। तो ये रागादि परिणामों का कारण कौन है, तो ये रागादि परिणाम किसके किए हुए हैं, सकल कर्म कृत सब सकल कर्म कृत सब कर्मों के द्वारा किए हुए हैं, ये रागादि परिणाम। और कैसे हैं ये रागादि परिणाम, ज्ञातृत्व मात्राति रिक्त, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव से अतिरिक्त है ये, इनमें ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं पाया जाता, किनमें, ये रागादि परिणामों में, कर्मों में नहीं। रागादि परिणाम कर्मों के द्वारा किए हुए हैं और इनमें ज्ञातृत्व मात्राति रिक्त, ज्ञातृत्व मात्र से ये अतिरिक्त है। और आत्मा की शक्ति की बात करो, आत्मा की शक्ति, तो बोले ऐसे जो परिणाम है, कौन से परिणाम जो कर्मकृत हैं और ज्ञातृत्व मात्र से अतिरिक्त हैं, ऐसे जो रागादि परिणाम हैं, उन परिणामों के करण स्वरूप नहीं होता आत्मा, करण उपरम आत्मिका, करण से उपरम स्वरूप होता है, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है। और ऐसी अभोक्तृत्व शक्ति में कहा कि जिस शक्ति के कारण आत्मा ज्ञाता भाव के अतिरिक्त समस्त कर्म कृत रागादि विकारी परिणामों के अनुभव स्वरूप, भोक्तृत्व है ना, भोक्तृत्व में अनुभव है, तो वो अनुभव स्वरूप भी नहीं होता और वहां करण स्वरूप नहीं होता। आत्मा रागादि परिणामों को करता नहीं है क्योंकि उसमें अकर्तृत्व शक्ति है, आत्मा रागादि परिणामों को भोगता नहीं है क्योंकि उसमें अभोक्तृत्व शक्ति है, करेगा तो भोगेगा और यदि तुमको भोगना नहीं है तो उसके कर्तृत्व का भी निषेध करना होगा। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति, सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम अनुभव उपरमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति, ऐसी अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति की व्याख्या हुई। अपनी 22 शक्तियां हो गई है, अब इसके बाद में एक और एक शक्ति भी होगी 26वीं भी, इसे इस चर्चा पे करें। छोटी छोटी है बात।